Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Use kaha ja raha hai, sach asach pashyati. Kehte ye ek ko kahan tak bataye, jagrat mein जिस जिसका भी जैसा जैसा अनुभव किया वो सब जैसे जैसे संस्कार मन में पड़े हैं और उद्भूत हुए हैं वो सर्वम शब्द से लेना उन सब संस्कारों के विषय और सर्व पश्यति यानी सब स्वप्नस्थ पदार्थों के जो जागृत में आहित संस्कार है उस संस्कार से युक्त हो करके यह मन सर्वम पश्यति का अर्थ है अपने जिन जिन संस्कारों के से युक्त है उन संस्कारों के विषयों को देखता है स्वप्न में अनुभव करता है तो पश्यति इस प्रकार ये जो शुरू वाला वाक्य था अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुपश्यति अनुभवति इसी का स्पष्टीकरण ये हुआ कि यद् दृष्टं अनुपश्यति इत्यादि इस वाक्य से तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया तीसरा प्रश्न था आचार्य पिपलाज जी के प्रति ऋषि गार्ग्य का कि स्वप्न अवस्था किसका धर्म है जीव का स्वाभाविक धर्म है या जीव की उपाधि का है जीव की उपाधि का है तो जीव की तो अनेक उपाधियां हैं उनमें से किस उपाधि का है तो ये बताया गया कि ये जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं है ये जीव की उपाधि का है और जीव की उपाधि में भी बाह्य इंद्रियों का नहीं वे तो उस समय व्यापार से उपरत है उस समय जो व्यापार युक्त है उसका धर्म होगा और उस समय व्यापार युक्त तो दो है स्वप्न में व्यापार युक्त दो कौन कौन है व्यापार युक्त का मतलब सक्रिय एक तो मन है और दूसरा प्राण है लेकिन प्राण तो तीनों अवस्थाओं में व्यापार युक्त होता है तो ये बताना होगा कि जो केवल स्वप्न के समय ही व्यापार से युक्त है प्राण से अतिरिक्त वो कौन है मन तो उस मन का धर्म स्वप्न अवस्था निश्चित होगी जीव में तो मन का धर्म स्वप्न अवस्था का आरोप होता है स्फटिक में लालिमा के आरोप के तरह उपाधि की सन्निधि में उपाधि का स्वप्न अवस्था रूप धर्म आरोपित हुआ चेतन में आत्मा में वस्तुतः वह स्वप्न अवस्था से रहित है इस प्रकार दो अवस्थाओं से विवेक हुआ तीसरी ये जो चौथा प्रश्न है वो चौथा प्रश्न है कि सुषुप्ति किसका धर्म है उसका उत्तर देने के लिए ये आ रही है छठवीं कंडिका ये कहा जा रहा है कि स यदा तेजसा अभिभूतो भवति तो जब स्वप्न अवस्था में सुख दुख भुगवाने वाला प्रारब्ध शांत हो जाता है जागृत अवस्था का पहले ही शांत हुआ तो स्वप्न अवस्था में सुख दुख भोगने का निमित्त भूत प्रारब्ध ने ही मन में पूर्वानुभूत पदार्थों के संस्कारों को उद्भूत किया था प्रकट किया था अभिव्यक्त किया था और जब वो प्रारब्ध शांत हो जाता है तो उस समय की स्थिति बताई जा रही है यदा यदा यानी जिस समय और वो समय कौन सा कि स्वप्न का प्रारब्ध भी शांत हो गया उस समय स तेजसा अभिभूतो भवति, तो स शब्द से लेना स्वप्न को देखने वाला देव। स्वप्न को देखने वाला देव कौन बताया गया? मन। तो मन यानी मनस्थ जो संस्कार है, वासनाएं हैं। स का तो अर्थ यद्यपि स्वप्न का अनुभव करता देव है, लेकिन वो कैसा देव स्वप्न का अनुभव करता है? जो उद्भूत वासनाओं से युक्त है। इधर ही लगाते हैं आप, तो उद्भूत वासनाओं से युक्त स्वप्न, उद्भूत वासनाओं से युक्त मन स्वप्न देख रहा था, वो स्वप्न का अनुभविता था। तो जब और वो वासनाएं उद्भूत हुई किससे थी? स्वप्न में सुख दुख भुगवाने वाले प्रारब्ध से उन वासनाओं का उद्बोधन हुआ था, अभिव्यक्ति हुई थी। वह प्रारब्ध जब भोग करके शांत हो जाता है, उस समय ये कहा जा रहा है कि वे वासनाएं अभिभूत हो जाती हैं। तो स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, तो तेज शब्द के दो अर्थ यहां पर किए हैं भाष्यकार ने। एक तो तेज है ये वात पित्त कफ, ये तीन धातु होते हैं ना शरीर में, इसमें से पित्त नाम का जो धातु है उसे तेज कहते हैं। और तेजसा शब्द से लेना पित्ताख्येन तेजसा, पित्त नामक जो तेज है उस पित्त नामक तेज से अभिभूत हो जाता है, का मतलब ये वासनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, अनभिव्यक्त अवस्था में चली जाती हैं। हाँ, संस्कार बुद्धि में कहीं होते हुए हमेशा अभिव्यक्त नहीं होते ना। जब ये पित्त बढ़ जाता है तो उस समय बुद्धिस्त संस्कार अभिभूत हो जाते हैं, अंतकरण संस्कार अभिभूत हो जाते हैं। और जिस मन के वो संस्कार अभिभूत हो गए हैं पित्त से, उसे कहा जाता है वो भी अभिभूत हो गया। संस्कार अभिभूत होने से मन भी अभिभूत हो गया, तो उस समय फिर व्यापार नहीं करेगा वो। स्वप्न में व्यापार क्या था कि उद्भूत वासनाएं ही अपने अपने विषयों से अभिव्यक्त हो गई थी, विषयों को दिखा रही थी, उसमें निमित्त था प्रारब्ध। वो प्रारब्ध शांत हुआ और पित्त बढ़ जाता है, और उस समय फिर ये वासनाएं आवृत्त हो जाती हैं। वासनाएं आवृत्त हो गई तो उद्भूत वासनाओं से युक्त मन को भी माना गया उस तेज शब्दित पित्त से अभिभूत हो गया, आच्छादित हो गया, का मतलब अब उसके अंदर विशेष वृत्ति नहीं रहेगी। हाँ, अभी तक जागृत अवस्था में तो इंद्रियों के माध्यम से विषयों के साथ मन का संबंध बन रहा था, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, और नई नई वृत्तियां बाह्य पदार्थ के आकार की मन में बन रही थी जब वो जग रहा था उस समय। और ये कार्य विषयक जो चित्त में वृत्तियां होती हैं उन्हें कहा जाता है विशेष ज्ञान, विशेष विज्ञान। ये माना जाता है चित्त में विक्षेप, और वो दो अवस्था में होता है। एक तो होता है जागृत में, जागृत में पूर्व संस्कार से भी विशेष विशेष वृत्तियां बनती हैं, वो स्मरणात्मक वृत्ति कहलाती है, और नई नई वृत्तियां बनती हैं इंद्रिय तथा अन्य प्रमाणों के माध्यम से भी उन्हें कहा जाता है अनुभव। जागृत अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है ना, एक तो अनुभव और दूसरा स्मृति। तो अनुभव और स्मृति दो प्रकार का ज्ञान उस समय होता है जागृत में और स्वप्न में भी। तो ये सब विशेष विशेष वृत्तियां रहती हैं और स्वप्न में उन संस्कारों से इंद्रियां भी दिखती हैं, पूरा जागृत जैसा ही जगत दिखता है ना। तो कुछ तो स्मृति जैसी भी लगती है, कुछ अनुभव भी होता है स्वप्न में, वो सब होता है वासना में ही इंद्रिया, वासना में ही विषय और वासना में ही अनुभविता। वो स्वप्न की जो त्रिपुटी होगी वह वासना में होगी, इसलिए जगने के बाद बाधित हो जाती है, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन ये जो विशेष विशेष वृत्तियां हैं जागृत और स्वप्न में होने वाली, ये सारी वृत्तियां उस समय शांत हो जाती हैं, अभिभूत हो जाती हैं। तेज शब्दित पित्त से वो विशेष विशेष वृत्तियां अभिभूत हो गई, वो संस्कार उनका निमित्तभूत अभिभूत होने से कोई अब विशेष वृत्ति नहीं बनेगी। उस समय मन की एक सामान्य वृत्ति रहती है, वो सामान्य वृत्ति है, उसे अविद्याकार वृत्ति कहो या एक सामान्य ऐसी वृत्ति कहो जो जागृत और स्वप्न में सुख दुख का अनुभव निमित्त प्रारब्ध तो शांत हुआ है, लेकिन इस शरीर में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध तो शांत नहीं हुआ ना। जब इस शरीर में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध शांत होगा तो फिर तो यहां रह नहीं सकते, यहां से उत्क्रमण करना होगा। ये पहले बताया था, उदान वायु फिर यहां से ले जाएगा सबको साथ में शरीरांतर में। लेकिन अभी इस शरीर में ही पूरे सूक्ष्म शरीर के अवस्थान का निमित्तभूत प्रारब्ध अवशिष्ट है, केवल वो विशेष विशेष वृत्तियों को उत्पन्न करने वाला निमित्तभूत प्रारब्ध शांत हुआ है। तो ऐसी अवस्था में एक प्रारब्ध होता है, उसे कहा जाता है जीवन अदृष्ट, जीवन अदृष्ट। और उस जीवन अदृष्ट को यानी जीवित रहने का निमित्तभूत जो अदृष्ट, उस अदृष्ट को आधार बना करके निमित्त बना करके एक मन की सामान्य वृत्ति होती है, कोई विशेष वृत्ति नहीं रहेगी। और सामान्य वृत्ति सुसुप्ति के समय भी रहती है, उस समय माना जाता है कि वो सो गया है, कोई किसी स्थूल या सूक्ष्म या वासना में कार्य विषयक चित्त में वृत्ति नहीं होगी, एक सामान्य वृत्ति मन की रहेगी, उसे अविद्याकार वृत्ति भी कहा जा सकता है या जीवन अदृष्ट में टिकी हुई मन की सामान्य वृत्ति भी कहा जाता है। और उस समय फिर वह उस सामान्य वृत्ति में मन का अधिष्ठानभूत जो चैतन्य है उसका आभास होता है, चिदाभास। और लोक में चेतन तो उसी को कहा जाता है ना, जिस जो चिदाभास से युक्त है वह चेतन है, और चिदाभास से रहित है वह जड़ है। बाकी ऐसे चेतन जो है आत्मा का स्वरूप, वह तो अपरिछिन्न होने से जड़ में भी अन्वित है, जड़ में भी सचित रूप से वे विद्यमान है ना। लेकिन वो लोक में जिसे जड़ कहा जाता है उसमें चिदाभास नहीं होता, और जिसे चेतन कहा जाता है उसमें चिदाभास रहता है। तो जब मन की सारी विशेष विशेष वृत्तियों के निमित्त तेज से अभिभूत हो गए, अवृत्त हो गए, तो विशेष वृत्ति नहीं रही, एक सामान्य वृत्ति रही। उस सामान्य वृत्ति में मन के चिदाभास पड़ेगा, इसलिए सोया हुआ व्यक्ति भी कहा जाता है कि अभी चेतन है, वो जड़ नहीं है। मृत में और सोए में अंतर होता है ना? क्या अंतर होता है? कि वहां वो मुर्दा जो होता है उसमें चिदाभास नहीं होता, और जो सोया हुआ है उसको भी, मुर्दे को भी बाह्य संज्ञान नहीं है, सोए हुए को भी बाह्य संज्ञान नहीं है। बाह्य संज्ञान का मात्र अर्थ तो है विशेष विशेष वृत्तियां, सोए हुए को मालूम नहीं रहता वो कहां सोया है, वो देश काल वस्तु आदि ये विशेष विशेष विज्ञान उसको भी नहीं है, लेकिन उसमें चिदाभास है इसलिए वो चेतन है। बाकी विशेष ज्ञान तो दोनों को भी नहीं है, मुर्दे को भी मालूम नहीं है कि वो कहां पर पड़ा हुआ है, और सोए हुए को भी मालूम नहीं है, लेकिन सोया हुआ चेतन है और मुर्दा जड़ है। ये जड़ और चेतन विभाग क्यों हुआ? एक में चिदाभास है, और चिदाभास होता किसमें है? चेतन में, क्या नाम है, अंतकरण में। इसलिए सुसुप्ति में अंतकरण की एक सामान्य वृत्ति माननी होती है। अंतकरण सामान्य अवस्था में सुसुप्ति में रहता है, उसे टिकाने वाला जीवन अदृष्ट रहता है। जब तक जीवन अदृष्ट रहेगा, अदृष्ट यानी प्रारब्ध, अदृष्ट कहते हैं प्रारब्ध को, तो जीवन अदृष्ट उस समय रहता है, और वो जो जीवन अदृष्ट है उसी से मन की सामान्य वृत्ति रहेगी, उसमें चिदाभास रहेगा, और लेकिन कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा। उस समय सुसुप्ति मानी जाती है, वो सोया है। तो कहते स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एष देवः स्वप्नान न पश्यति। तो एष देवः यानी ये मन, अत्र यानी इस अवस्था में, जब उसकी सामान्य वृत्त्यात्मक मात्र अवस्था है, कोई विशेष वृत्ति का निमित्त वहां नहीं है, ऐसी अवस्था, जो निमित्त थे वासना आदि वे तो अभिभूत हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में स्वप्न का अनुभव नहीं होगा। स्वप्नान्न पश्यति मतलब स्वप्न अवस्था से अब वह प्रचूत होकर के मन अपनी सामान्य अवस्था जिस अवस्था में होती है उस सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा है। तो उस समय कहते हैं अथ एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम् भवति। अथ का अर्थ है तदा, उस समय क्या होता है कि एतत् सुखम्, एतस्मिन् शरीरे भवति। तो उस समय ये जो सुसुप्ति हो रही है, सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान कहाँ होता है? शरीर से बाहर जाता है कि शरीर में रहता है? शरीर में रहता है। शरीर में कहाँ रहता है? तो वो रहता है, मन तो अविद्या में स्थित होगा, और जीव जो मन उपाधिक था चैतन्य, वो सत के साथ एकीभूत होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ब्रह्म के साथ उसका एक ही भाव होता है। किसका? जीव का। और मन कहाँ है? मन है उस समय जो उपाधि है अविद्या, उसमें है कारण शरीर में, कारण शरीर के आकार का है मन, मन भी है। और उस समय कहते हैं वहां ये जो सुख हो रहा है, ये पूछा गया था ना कि कस्य एतत् सुखम भवति, का मतलब सुसुप्ति अवस्था किसका धर्म है। तो उस समय ये जो कोई प्रारब्ध कर्म आदि नहीं है और इसलिए कर्म का फलभूत सुख नहीं है, सुसुप्ति के समय जो सुख हो रहा है उस समय जो स्वरूप भूत सुख है उसी की उस मन के सामान्य अवस्था में अभिव्यक्ति है। मन की जो सामान्य अवस्था है वो है एक प्रकार से सामान्य ज्ञान, और स्वरूपभूत सुख और वो सामान्य ज्ञान ये दोनों कोई अलग अलग दो वस्तु नहीं है। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है ना ब्रह्मा को, तो चित अलग है, आनंद अलग है, या दोनों एक है, वो अद्वैत है ना। तो अद्वैत होने से चित का अर्थ और आनंद का अर्थ अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। इसलिए एतत् सुखम, इसमें एतत् शब्द से लीजिए उस समय का जो विशेष विशेष वृत्त्यात्मक ज्ञान रूपी विक्षेप से रहित सामान्य विज्ञान है, वह एक प्रकार से विक्षेप रहित होने से आनंद रूप से अभिव्यक्त होता है, उसे सुख कहा जाता है। वो चेतन ही है, विक्षेप रहित चेतन का ही नाम है सुख, और विक्षेप कहा जाता है जागृत स्वप्न में होने वाली विशेष विशेष वृत्तियों को कहा जाता है विक्षेप। वह विक्षेप उस समय नहीं है, इसलिए क्या होता है कि वो जो सामान्य ज्ञान है वही सुख रूप से भासता है। इसलिए भाष्य में एतत् सुखम का अर्थ करते समय भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये जो जैसे निवात स्थान पर रखा हुआ दीप बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, हवा उसे जितना जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए उतना तो देती है और बाकी उस लौ को बिल्कुल विक्षिप्त नहीं करती, और वह प्रसन्न रहती है ज्योति उस समय। ऐसे एक ही सामान्य वृत्ति वहां पर है और उस सामान्य वृत्ति में अभिव्यक्त जो चिराभास है वो चिराभास ही सुख है, सुखाभास कहलाता है, वही सुख है। ये चिदाभास अलग और सुख अलग ऐसे दो नहीं है, चिदानंद ही चित ही आनंद है, और वो जिसका वो चिदाभास हो रहा है वो तो चित है, वो स्वरूपभूत आनंद है। सुसुप्ति में तो वह अविद्या से आवृत्त होने के कारण माना जाता है आभास उसका उपलब्ध हो रहा है, उसकी छाया उपलब्ध हो रही है उस चेतन की, वही सुख कहलाती है। और वो किसमें हो रहा है, मन की अविद्या का वो अविद्याकार वृत्ति में, उस समय है एक प्रकार से पंचकोशों में से आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश का यह सुसुप्ति अवस्था धर्म है, ये यहां पर बताया गया है। वहां जो उस समय जो उपाधि होगी उसी उपाधि का धर्म माना जाएगा सुसुप्ति को। तो उस समय कौन है, तो कोई विशेष व्यापार तो नहीं है, निर्व्यापार मन है अविद्या के आकार का, और उस अविद्या के आकार के मन का ही नाम है आनंदमय कोश कहो अविद्या कहो, और उसका वो धर्म होगा ये सुसुप्ति अवस्था। और इस प्रकार ये अवस्था त्रय से त्वम पदार्थ को अलग कर दिया, ये तीनों अवस्थाएं उसकी उपाधि की अवस्थाएं हैं और उसमें आरोपित होती है उपाधि की सन्निधि में और आत्मा इन अवस्थाओं से अलग अवस्था त्रय का साक्षी है। उसका तत्वमसी वाक्य में तत्पदार्थ के साथ अभेद है, ये बताया जाएगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओ हरिओम हरिओम।